आजीवी ट्रेनियल 2023 समकालीन कला, डिजाइन और वास्तुकला के संवाद को आगे बढ़ाने की ओर एक कदम है। साल के अंत में होने वाली इस प्रदर्शनी के माध्यम से दुनिया के 100 सबसे कुशल कलाकारों का जश्न मनाया जाएगा। रोबोटिक्स, युद्ध, मौसम के पैटर्न और महानगरों जैसे विषयों पर ये प्रदर्शनी उन असाधारण तरीकों को सामने रखेगी जिनसे वर्तमान के महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रमुख और उभरते कलाकारों ने प्रतिक्रिया दी है। जहां विश्व भर से इस प्रदर्शनी में आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं, वहीं भारत से इस प्रदर्शनी में अपना आर्ट वर्क प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला कुलकर्णी। आज हमने शकुंतला कुलकर्णी से बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कला की तो बिल्कुल नहीं। कुलकर्णी जी, आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं।
1972 तब से मैं काम कर रही हूँ पेंटिंग्स। मेरी शादी हुई है एक लॉयर के साथ और मुझे दो बच्चे हैं बड़े, मेरे दो। धीरे धीरे बदल हो गया काम में और मुझे लगा कि मुझे वो भाषा बढ़ानी है पेंटिंग की। सिर्फ कैनवस या पेपर के ऊपर नहीं चलेगा, वो वॉल से बाहर आना चाहिए।
तो कुलकर्णी जी, हमें आप बताएं कि इंस्टॉलेशन आर्ट आखिर होता क्या है?
इंस्टॉलेशन आर्ट जो बोलते हैं, अलग अलग तरीके के इंस्टॉलेशन आर्ट्स होते हैं, लेकिन मैं जैसे सोचती थी, क्योंकि मुझे एक बैकग्राउंड है, मेरी माँ भी एक्टिंग करती थी, हम तीनों भी बहनें डांस सीखे हैं, भरतनाट्यम, कथकली, ये परफॉर्मिंग जो बैकग्राउंड है उसके वजह से शायद होगा, तब सोचा नहीं था। जैसे जैसे काम होते रहा तैसे मुझे लगा कि एक फिजिकल स्पेस निर्माण करना चाहिए, सिर्फ देखना नहीं खड़े होके, व्यूअर्स के लाइक ऐसे फिल्म देखते हैं वैसे नहीं, मुझे वो लगा कि उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्होंने मेरे स्पेस में से घूमना चाहिए। जो मैंने 1994 में काम किया वो पहली बार किया इंसुलेशन, जहाँ स्टेज था, रेलिंग्स था, स्टेप्स थे, और पहली बार मैंने ऐसे स्पेस यूज किया और आगे बढ़ती गई।
जाहिर सी बात है, आप काफी वक्त से इंस्टॉलेशन आर्ट के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो क्या आपको याद है कि आपका पहला प्रोजेक्ट आपने कहाँ किया था और लोगों की इस तरह की आर्ट पर क्या प्रतिक्रिया रही थी?
रिड्यूस स्पेसेस करके एक था जहाँ मैंने फिल्म्स बनाई थी, लेकिन आप ऐसे ही खड़ा होके या बैठ के फिल्म्स नहीं देख सकते। बाम्बू के स्कैफोल्डिंग्स जो होते हैं ना, रिपेयर के टाइम पे स्कैफोल्डिंग बैम्बू के बनाते हैं, बिल्डिंग्स रिपेयर या बिल्डिंग बनाते समय, वैसे मैंने एक्चुअली डिजाइन किया। और जहांगीर आर्ट गैलरी जो हमारी एक पब्लिक गैलरी है बम्बई में, वहां मैंने एक्चुअली निर्माण किया और उसके बीच में से आप जाके मेरा काम देखते थे, ऐसे मैंने एक प्रयत्न किया। हाँ, जैसे आप देखते हैं ना, तो बीच बीच में ये बांबू आते थे, या मैं आपको राइट साइड को या लेफ्ट साइड को एकदम जाने को नहीं देती थी, क्योंकि मैंने आड़वे बांबू भी लगाए थे, सो मैं कंट्रोल करती आपके मूवमेंट, आपको थोड़ा देखते समय अनकंफर्टेबल हो जाता, वही तो एक्चुअली मेरा इरादा था। मेन स्पेसेस हैं जो इतने थ्रेटन्ड है, जहाँ कंफर्टेबली आप पब्लिक या प्राइवेट स्पेसेस में मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, अत्याचार, वायलेंस जो होता है उसके बारे में मैं बोलती थी और बहुत सालों से बोल रही हूँ यही चीज, और वो होते ही जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक ने सीलिंग पे सब लगाया ग्लास के ऊपर की, ये वो ड्रॉइंग्स, एंड व्हेन शी रोड द यूनिवर्स क्विक, ऐसा एक टाइटल था, वो मल्टीमीडिया था, उसमें फिल्म्स भी थे, उसमें पेंटिंग्स थे, टेक्सटाइल के ऊपर मैंने बनाए थे। मैं कैनवस ज्यादा यूज नहीं करती, मुझे कपड़े के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। मैंने मैग्नीफाइंग मिरर्स दिए थे कि उसमें आप देखते हैं ऊपर का सीलिंग का, तभी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा ही ना, क्योंकि आप अपना मुंह देखेंगे पहला, फिर थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा, तो काम देखेंगे, तो बहुत सारे लोग नाराज हुए, वही था, वही इरादा भी था। इतना कंफर्टेबली मेरा काम आप नहीं देख सकते क्योंकि बाहर जो चीजें हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में मैं जब बोल रही हूँ, तो आपको इतना कंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं?
तो जैसा कि आपने बताया कि आपका उद्देश्य ही ये था कि जो लोग आपका आर्टवर्क देखने आ रहे हैं उन्हें भी कुछ भावनाओं का एहसास हो और परेशानी कह लीजिए या एक तरह का डिस्कम्फर्ट कह लीजिए वो उन्हें महसूस हो। इन सब के बीच मैं ये जानना चाहूंगी कि आर्टिस्ट बनने का ये ख्याल आपको आया कैसे?
मेरी माँ बोलती थी कि मैं जब छोटी थी मैं ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करती थी, मैं कोने पे बैठ के ड्राइंग ही करती थी कॉलेज में स्पेशली, लेकिन स्कूल में भी मैं बहुत सारा काम किया। और क्या है कि माँ ने हमें सबको वो डांस क्लास में डाला था, केएच आरा करके जो एक बहुत मशहूर पेंटर थे, मेरी माँ के फ्रेंड्स थे, थिएटर लोग आते जाते थे, और ये डांस की टीचर भी मेरे मेरा काम भी देखते थे। और वो बोलते थे कि उसमें जो रिदम है ना वैसे डांस करो। फिर आरा बोलते थे कि उसमें जो मूवमेंट है वैसे ड्रॉ करो। तो मुझे दोनों बाजू से एक टीचिंग मिला, एक शिक्षा मिली कि रिदम क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है, स्पेस क्या होता है, ये लाइन क्या हो सकती है। एक मल्टीमीडिया का तभी से ही मुझे शिक्षा मिली, ऐसे मुझे अभी पीछे मुड़ के देखते समय ऐसे,
जी,
लेकिन वो पर्पसली नहीं किया था, हमारे घर में ये वातावरण ही ऐसा था।
तो कह सकते हैं कि आपके घर में जो अन्य सदस्यों का कला की तरफ एक झुकाव था, उससे आपकी कला को काफी प्रोत्साहन मिला। साथ ही मैं जानना चाहूंगी, जब आपको पहली बार पता चला कि आपका चुनाव इतनी बड़ी प्रदर्शनी के लिए हुआ है, तब आपको कैसा लगा?
अच्छा ही लगा। तो
जी
पहली बार जब वो हुआ तो मैं बहुत ही एक्साइट हुई थी, क्योंकि कभी गई नहीं थी। बाजिल में अनलिमिटेड में मुझे इनवाइट किया गया, जहाँ इनवाइट नहीं किया जाता है, जहाँ अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो क्यूरेटर ने मुझे इनवाइट ही किया थ्रू द गैलरी, तो वो मुझे बहुत ही सरप्राइज हो गया था। और फिर 2019 में जब भी किरण नाडर म्यूजियम की क्यूरेटर, उन्होंने फोन किया कि मैंने आपको वेनिस बियनाले में लिया है और आप 7 आर्टिस्टों में एक हो, तो मुझे तो धक्का ही बैठा। मैंने बोला आप जोक कर रहे हो, क्योंकि बियनाले में मैं हमेशा जाती हूँ बहुत सालों से, आई वॉज अ व्यूअर, अभी मैं इनसाइडर थी और मुझे मालूम नहीं था कि कैसे हो सकता है, वो एक्साइटमेंट था। आप जैसे आते हैं एक प्रदर्शन देखते हैं, लेकिन हम कैसे वो प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या
बिल्कुल
डिफिकल्टीज हैं, वहाँ बहुत रूल्स हैं, इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, यू नो लाइक वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स, सो ये सब मजा मजा आया।
कुलकर्णी जी, ऐसा कहा जाता है कि एक जो कलाकार होता है उसकी कला का उतना ही महत्व होता है जितना कि उसकी सोच का और उसके उद्देश्य का। इस चीज को आप कैसे देखती हैं?
मुझे क्या होता है, मुझे दोनों ही मिक्स होता है मेरा, कभी कभी मुझे मटेरियल जो मिलता है ना उससे मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ और मुझे लगता है अरे ये कैसे वापरूं। कभी कभी अभी एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैंने बहुत सालों से वायलेंस के ऊपर काम किया, वायलेंस ऑन द बॉडी, फीमेल बॉडी, पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस में ये जो होता है उसके बारे में। आजकल बहुत सारे आगे आए हैं, फिर भी आप अगर पढ़ाते हैं उन्नाव कैसे हुआ, फिर हथरस कैसे हुआ, लॉज बनते रहते हैं लेकिन कुछ फायदा बहुत सा नहीं लग रहा है, वो होते ही जा रहा है ऐसे। इसके बारे में मैं जब सोचती हूँ, ये मेरा एक बैकग्राउंड होता है और पर्पसली ऐसे नहीं, मैं न्यूज पढ़ती हूँ, किसी के साथ बात करती हूँ, देखती हूँ, तो ये सब मुझे ये है और मुझे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है।
तो कुलकर्णी जी, एनजीवी ट्रिनियल में जो आप प्रस्तुति पेश करने वाली हैं, आर्मर ऑफ द ब्राइड्स, इसके बारे में हमें कुछ बताएं।
मेलबर्न का जब आया तो मेरे मेरे साथ काम करने वाला, उसको हार्ट अटैक आके वो चल बसा था, और दूसरा आसाम से मैंने लाया था, तो ये जो ज्वेलरी मेकर मिला वो आया, उसने बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ काम किया, जो जो बम्बई का बनाता था केन का, आसाम का उसके ऊपर वीविंग करता था, और बहुत खूबसूरत उन्होंने चीज बनाई, बहुत मजा भी आया। लेकिन बीच में मैंने 2016 से किया नहीं, क्योंकि एक तो मेरा दिनेश चल बसा और ये वापस चला गया। अभी कोविड आ गया कि मेलबर्न के लोगों ने, एनजीवी ने पूछा गया कि ये चाहिए, मेरे पास 2-3 थे, मैंने बोला लीजिए, बोले नहीं हमको नया चाहिए, मैंने बोला नहीं हो सकता है क्योंकि मेरी टीम नहीं है, केन भी मटेरियल भी बराबर नहीं आता था, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, और बिना कॉन्टेक्स्ट में काम ही नहीं कर सकती। मैं ना ही बोल रही थी, दिमाग में चल रहा था कुछ, बैकग्राउंड नहीं है तो मैं क्या इनको बोलूँ, क्या करूँ,
जी
जो किया है वही रिपीट कर सकती हूँ और क्या। इतने में क्या हुआ, मेरी घर में जो काम करती है उसने छुट्टी ली थी, क्योंकि घर में शादी थी उनके, छुट्टी लेकर गई लेकिन जल्दी आ गई। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली कि वो लड़की भाग गई उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो अभी शादी नहीं हो सकती। लेकिन फिर वो गुस्से से बोली, फिर एंगेजमेंट क्यों किया, इतना खर्चा किया। मैंने सिर्फ उसको पूछा क्यों लगता है आपको कि वो गई, भाग गई, उसका बॉयफ्रेंड था पहले ही, क्यों नहीं गई? ऐसा हो सकता है कि घर वालों ने ना बोला, या वो दूसरे कास्ट का था या दूसरे रिलीजन का था। वो सोचने लगी कुछ, वो बोली मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैंने बोला ब्लेम कितने इजीली हम करते हैं ना औरतों को, दैट ट्रिगर्ड ऑफ, इसका ये ट्रिगर था। अरे मैंने सोचा कि शादियों में कितने एट्रोसिटीज होते हैं, लॉ बोल रही है कि दहेज नहीं देना चाहिए फिर भी दे रहे हैं, उसकी वजह से
जी
कितनी तकलीफ होती है लड़कियों को, एसिड थ्रो होता है, ऑनर किलिंग होता है उनको, वो घर वाले बहुत परेशान भी करते हैं दहेज नहीं दिया करके। हर वक्त नहीं लेकिन बहुत सारे लड़कियों को ये प्रॉब्लम आता है। फिर खर्चा, फिर पेरेंट्स को खर्चा करना पड़ता है बाहर से, बैंक से या लोगों से पैसे लेने का, फिर उनको रिटर्न करने का, एक टेंशन बहुत है। ये सब मैं उसके साथ बात कर रही थी, बोल रही थी, उसको समझा रही थी कि ऐसे होता है, तो वो ट्रिगर हो गया और मैंने एकदम हाँ बोल दिया। मैंने बोला कि मैं आर्मर फॉर द ब्राइड्स बनाऊंगी
जी
उसको प्रोटेक्शन के लिए।
तो जैसा कि आपने बताया कि आपका एनजीवी ट्रिनियल तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, आखिरी सवाल मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहूंगी कि इस उम्र में जब आप इतनी सारी प्रदर्शनियों का हिस्सा रह चुकी हैं, ऐसी वो क्या एक चीज है जो आपको आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है?
क्या होता है ये सब होने के बाद ना, आप वापस बम्बई आते हैं अपने स्टूडियो में और
बिल्कुल
जमीन के ऊपर खड़े होते हैं, आपको वो रियलिटी है, और ब्लैंक पेपर आगे होता है, अब क्या करें, अब क्या निर्माण करें, जो हुआ वो हुआ, मजा आया, लेकिन अभी क्या वो प्रश्न तो वो होता ही है आगे। सिर्फ किताबों लिख के और बोल के नहीं जमेगा ना, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। मैंने ये पांच काम करने से क्या दुनिया बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, लेकिन
जी
मुझे लगता है ये छोटी सी चीज क्यों ना हो, बोलना जरूरी है।
एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। आपके कभी न रुकने वाले जज्बे और पैशन को हमारा सलाम। आपको एनजीवी ट्रिनियल 2023 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने प्रस्तुत किया भव्या पांडे ने।